MISR lecture number 841. Om Namo Siddhebhyo. Om Namo Siddhebhyo. Om Namo Siddhebhyo.
Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vajrayanam, Namo Loe Sauvasahuram,
Namasamaya
Saraya Swanubhutya Chakasate Chitsvabhavaya Bhavaya Sarvabhavantarachide Vanditu Sauvasiddhe Duvamachalamanovamam Gadimpate Vochami Samaya Pahura Minamo Sudakevali Vanidam.
यह कुंदकुंदा आचार्य भगवान का जो समय सार है उसमें से जो 47 शक्ति आचार्य अमृत चंद्राचार्य ने जो निकाली है उसमें से अभी हम सुख शक्ति को देखने जा रहे हैं। वह सुख नाम की जो शक्ति है वह सिर्फ सिद्धों में होंगी ना, हाँ प्रत्येक जीव में है, वहाँ उनका पर्याय में परिपूर्ण जो स्वरूप है वह प्रकट हुआ है, इसलिए वे और उनके पहले अरहंत अवस्था का जीव जो है वे सभी जीव अनंत सुख से युक्त है। वो सुख शक्ति क्या है, किसको सुख कहना, ये बात अपनी चल रही थी। तो वहाँ कह रहे हैं अभी हम पेज नंबर 32 पर आए हैं, यहाँ जो नया दूसरा पैराग्राफ चालू होता है, 47 शक्ति ना आ अधिकार मां श्रद्धा ने चारित्र ए बन्ने शक्तियों नु अलगती वर्णन करियो नथी। क्या कहा, कौन सी बहन, ये पढ़ी नहीं थी कल? अच्छा नहीं मैंने पढ़ी, कोई बात नहीं, फिर से आ सुख शक्ति नु वर्णन छे, वहां से चालू करते हैं, ऊपर से चौथी लाइन। केवी छे सुख शक्ति तो कहे छे अनाकुलता लक्षण स्वरूप छे, यानी जहाँ आकुलता है वहाँ सुख नहीं है, ये बात बताते हैं। तो सुख का लक्षण क्या है, तो कहते हैं जो अनाकुलता है वही सुख है। एक समय नी वर्तमान दशा में आकुलता दुख छे ते गौण छे, अंदर ये किसकी बात कर रहे हैं, देखो जो चौथा गुणस्थान वर्ती जीव है उसको भी सुख का वेदन चल रहा है, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन है, फिर भी वहाँ कषाय अभी मौजूद है और उस कषाय के निमित्त से वहाँ दुख भी है, लेकिन उसको गौण किया है क्योंकि उसने जो सत्य सुख है यानी अतीन्द्रिय सुख का उसने स्वाद लिया है और अभी उसको तो उसी में ही अपना समर्पित है, वह उसी को ही परिपूर्णता प्राप्त करने के पीछे है, इसलिए उसके जो अभी ये जो दुख हो रहा है राग के कारण जो आकुलता हो रही है उसको गौण किया है, इसलिए कहते हैं कि वर्तमान दशा में जो आकुलता छे दुख छे ते गौण छे, अंदर वस्तु त्रिकाली ध्रुव नित्यानंद छे ते अनाकुलता लक्षण छे। यहाँ नित्य आनंद ऐसा जो कुछ है स्वभाव जीव का वो कैसा है, अनाकुलता स्वरूप है। झीणी वाचे प्रभु काय हूँ करूँ एवी वृत्ति जे उठे ते आकुलता छे, शुभाशुभ विकल्प उठे ते आकुलता छे, પણ મારે કાંઈ જ કરવું નથી, જ્ઞાન પણ કરવું નથી, થાય છે તેને શું કરવું? આહા, આવી સર્વ વિકલ્પ રહિત, કાંઈ પણ કરવાના બોજા રહિત નિર્ભારતા, તે અનાકૂળતા છે. યહાં ક્યા બતાના ચાહતે હૈ કે યહાં મુઝે અભી કમ સે કમ આત્મા કા તો અનુભવ કરના હૈ, નહીં આત્મા કા અનુભવ હોને કે બાદ મેરે કો તો બસ ભાવ કમ કરકે મોક્ષ હી જાના હૈ, એસી કિસી ભી બાત કી ઉસકે આકુલતા નહીં રહેગી. તો ક્યા કહેતે હૈ, જો હોને વાલા હૈ ઓર જો હો રહા હૈ ઉસકો કરને કા કહાં સવાલ હી કહાં, કહેતે હૈ તો શું કરે, કહે છે કે મારે કાંઈ જ કરવું નથી. કેમ? જ્ઞાન તો કરવું છે કે નહીં? જ્ઞાને નથી કરવું. કેમ કે એ થવાનું જ છે. જો જ્ઞાન મારો ગુણ છે તો એની પર્યાય તો સમય સમય થવાની જ છે. તો કહેતે થાય છે તેને કરવું શું? આવી સર્વ વિકલ્પ રહિત, યાને યહાં અભી કોઈ વિકલ્પ નહીં હૈ, એસે વિકલ્પ રહિત કાંઈ પણ કરવાના બોજા રહિત નિર્ભારતા, તે અનાકૂળતા છે. આવી અનાકૂળતા લક્ષણ સુખ શક્તિ છે અને તેનું કાર્ય પણ અનાકૂળ અને આનંદમય છે. એનો સ્વાદ ભગવાન સિદ્ધના સુખ જેવો હોય છે. ક્યા કહે રહે હૈ? હમ તો અભી દેખા થા ને અભી ઇસકે પહેલે કે સુખ કી મુખ્યતા સે સિદ્ધોં કા હમ વર્ણન કરતે હૈ. तो वहां मुख्य रूप से तो उनके सुख की बात करते हैं. यहां क्या बता रहे हैं कि जो चौथे गुण स्थानवर्ती जीव है वह जो सिद्ध भगवान जिस प्रकार का अनाकुल सुख का वेदन कर रहे हैं वो क्वालिटी इसको भी है, क्वांटिटी नहीं है. जो अतीन्द्रिय सुख जो है, अनाकुलता लक्षण जैसा जो सुख है, वह चौथे गुण स्थान वाला भी उसका उसको चाख रहा है, स्वाद ले रहा है. क्या कह रहे? देखो, तेनु कार्य पण, ये क्या कहते हैं? आवी अनाकूलता लक्षण सुख शक्ति छे, ये सुख गुण की बात करी. अने तेनु कार्य पण अनाकूल आनंदमय छे, कार्य जो पर्याय में जो प्रकट हो रहा है. एनो स्वाद भगवान सिद्धना सुख जेवो होय छे. हां, 47 શક્તિના અધિકારમાં શ્રદ્ધા અને ચારિત્ર, એ બંને શક્તિઓનું અલગથી વર્ણન કર્યું નથી. તો કિસમે ઉસકો ગર્ભિત ક્યા હૈ? આ સુખ શક્તિમાં તે બંને શક્તિઓ સમાવી દીધી છે. ક્યા? દેખો દેખો, અભી ક્યા કહેના ચાહતે? સુખ શક્તિ ઉસકા લક્ષણ ક્યા હૈ? અનાકુલતા. અભી જો જીવ મિથ્યા દ્રષ્ટિ હૈ ઉસકો આકુલતા હોગી કે નહીં હોગી? जिसको राग द्वेष बाकी है उसको तो दोनों ही आकुलता वाले हैं, और जो सुख शक्ति कैसी अनाकुलता लक्षण वाली है. तो इन दोनों के अभाव में जो कुछ प्रकट होना है वो सुख होना है, ख्याल में? इसलिए क्या कहते हैं, देखो बेन, मैंने कल बोला था ना कि ये जो अभी आने वाला पैराग्राफ है उसमें विशेष एक्सप्लेनेशन है. कोई बात नहीं, अच्छा हो गया, अपने को कंटिन्यूटी मिली ना पहला पढ़ के. देखो फिर से क्या कहते हैं, आ 47 शक्ति ना अधिकार में श्रद्धा ने चारित्र बनने शक्तियों अलग थी वर्णन कहू नहीं. तो क्या उनका स्वभाव परिणाम नहीं हो रहा है? हाँ हाँ, हो रहा है, हो रहा है. वितरकता क्या है? वह भी सुखी है, आनंद ही है. तो आ सुख शक्ति में ते बनने शक्तियों समावी दीदी से सुख शक्ति नी जेम श्रद्धा शक्ति त्रिकाल छे. આ જ્ઞાનાનંદમય ત્રિકાળી ધ્રુવ દ્રવ્યતે હું છું એવી પ્રતીતિ, એટલે એવું શ્રદ્ધાન થાય, તે તેનું કાર્ય છે. કોનું? કોનું કાર્ય છે? શ્રદ્ધા શક્તિનું. આહા હા, સમ્યક દર્શન રૂપ થવું તે શ્રદ્ધા શક્તિનું કાર્ય છે, અને તે પ્રકટતા સાથે તે જ સમયે નિયમથી અનાકુળ આનંદનું સંવેદન પ્રકટ થાય જ છે. આ પ્રમાણે સુખશક્તિના કાર્ય દ્વારા અનાકુળ આનંદના સંવેદન દ્વારા શ્રદ્ધાશક્તિ અને તેનું કાર્ય પ્રકટ થવાનું પ્રકટ થયાનું સમજી શકાય છે. અભી ઇસસે હમ યે નક્કી કરતે હૈ ઓ કે કિસી જીવ કે અગર આત્માનુભૂતિ હુઈ હૈ યાને સમ્યક શ્રદ્ધાન હુઆ હૈ સમ્યક જ્ઞાન હુઆ હૈ સમ્યક ચારિત્ર હુઆ યાને ક્યા રત્નત્રય હુઆ હૈ યાને જિસકો હમ શોર્ટ મે કહેતે હૈ સમ્યક તો હુઆ હૈ તો વો હુઆ હૈ કે નહીં કૈસા સમજે તો કહેતે યે જો સુખ કા જો પરિણમન હૈ યાને અતિન્દ્રિય આનંદ કા જો સુખ કા વેદન હો રહા હૈ વો જિસકો હાથ મે આ જાય તો સમજના કો અપને કો તો દૂસરે કો પૂછને કી આવશ્યકતા નહીં હૈ કે ક્યો સાહેબ હમકો હો ગયા કે નહીં જરા આપ બતાઓ ના ક્યા કહે રહે ये लास्ट बट वन लाइन पढ़ रहा हूँ. अनाकुल आनंदना संवेदन द्वारा श्रद्धा शक्ति अने तेनु कार्य प्रकट थयानु समझी शकाय छे. आ रीते सुख शक्ति मां आचार्य देवे श्रद्धा शक्ति गर्भित करी दीधी छे. ત્યાં બંનેના લક્ષણ તો ભિન્ન ભિન્ન જ જાણવા યાને ક્યા કહેના ચાહતે હૈ કે સુખ શક્તિ કા લક્ષણ ક્યા હૈ અનાકુલતા ઓર શ્રદ્ધા ગુણ કા ક્યા હૈ તો મિથ્યાત્વ કો છોડના યાને ક્યા કહે રહે કે સહી શ્રદ્ધાન કરના તો લક્ષણ દોનો કા જુદા જુદા હૈ.
ઓર યહાં બાત હૈ ને શ્રદ્ધા શક્તિ કા કાર્ય પ્રકટ હુઆ સમ્યક દર્શન હુઆ એ કૈસે જાના. यहाँ लिखा देखो अनाकुल आनंदना संवेदन द्वारा वही समय है दोनों का तो उसी के द्वारा समझ में आता है कि यहाँ समय दर्शन का कार्य प्रकट हुआ है. प्रकट थयानो समझी शकाय छे क्योंकि श्रद्धा का अलग परिणाम कुछ नहीं दिखेगा वहां पर.
बात ऐसी है कि श्रद्धा का जो कुछ परिणाम हो रहा है वो आप हम बता ही नहीं सकते कि मेरी इतनी परसेंट श्रद्धा सही हो गई है. ज्ञान में तो कभी कभी वो ज्ञान कितना है क्या है वह तो कुछ मतलब रीति से वो प्रकट दिखाई देता है, लेकिन श्रद्धा सही हुई है या नहीं ये ना आप बता सकते हो ना माप सकते हो. तो सही श्रद्धा हुई है ये कैसा समझे. तो कहते जब अतीन्द्रिय आनंद हो गए तो समझ लेना तेरी श्रद्धा सही है. आहा श्रद्धा अने चारित्र तो मूल चीज छे. सुरताली शक्ति मां तेनु वर्णन नथी तेती ते नथी एम न समझू. बन्ने ने आ सुख शक्ति मां समावी दीधेल छे एम यथार्थ जाणवू. आहा आत्मा मां जेम श्रद्धा शक्ति त्रिकाळ छे तेम चारित्र शक्ति त्रिकाळ छे. સ્વરૂપાચરણ સ્વરૂપ સ્થિરતાની ક્રમે વિશેષતા થવી તે ચારિત્ર શક્તિનું કાર્ય છે. હવે અહીંયા દો બાતે બતાવી. સ્વરૂપાચરણ ક્રમે એમાં એની સમોચાચરણ સ્વરૂપાચરણની ક્રમે વિશેષતા થવી કહો કે સ્વરૂપ સ્થિરતાની ક્રમે વિશેષતા થવી કહો. દોનો કોઈ વાત એક હે તે ચારિત્ર શક્તિનું કાર્ય છે. यहाँ एक बात ध्यान रखना हो, यहाँ हर जगह गुण को ही शक्ति कहा गया है. यानी वैसे अगर डिटेल में देखा जाए तो ये जो शक्ति है और ये जो धर्म है और ये जो गुण है इनके वैसे देखा जाए तो लक्षण भी थोड़े थोड़े अलग अलग है, लेकिन यहाँ उसमें कोई भेद न करते हुए एक साथ उसको गिना है. क्या कहा? आत्मा मां जेम श्रद्धा शक्ति त्रिकाळ छे तेम चारित्र शक्ति त्रिकाळ छे. स्वरूपाचरण स्वरूप स्थिरतानी क्रमे विशेषता थवी ते चारित्र शक्ति नु कार्य छे अने ते त्रिकाळी ध्रुव द्रव्यना उग्र आलंबन थी प्रकट थाय छे. आहा आवी चारित्रनी क्रमवर्ती वितरागी दशा प्रकट थाय छे त्यारे तेनी साथे नियम थी अनाकुळ आनंदनी प्रचुर प्रचुरतर दशा अनुभवाय छे. ये प्रचुरतर या नहीं समझ में आया? हाँ सर, हाँ। यानी जैसा हम अंग्रेजी में तीन बातें आती है, एक रेगुलर जो कुछ है, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री, यानी जिसको हम गुड बेटर बेस्ट कहते हैं। तो ये रेगुलर जो आनंद है या प्रचुर है उसको प्रचुरतर कहना, वो कंपैरेटिव डिग्री हो गई, यानी बेटर की जगह, और बेस्ट की जगह प्रचुरतम। बोलो।
देखो यहाँ चारित्र में क्रमवर्ती वितरागी दशा का है ना, जैसे श्रद्धा में कोई क्रमवर्ती नहीं रह दशा, वो तो बस सम्यक हो गई अनाकुल आनंद का, वहाँ वहीं से चारित्र की भी शुरुआत है, इसलिए वहाँ पर अनाकुल आनंद की उत्पत्ति हुई है। परंतु चारित्र में अभी अधिक अधिक आनंद की दशा होती चली जाएगी।
इसलिए कहते हैं, ये दोबारा पिछली लाइन पढ़ता हूँ, आवी चारित्रणी क्रमवर्ती वितरागी दशा प्रकट थाई छे। अभी आपको बताया ना, ये चारित्र में ही क्रम क्रम से शुद्धता बढ़ती जा रही है। और उसी समय क्या होता है, साथ है नियम थी, यानी विदाउट फेल अनाकुल आनंदनी प्रचुर प्रचुरतम दशा, प्रचुरतर दशा अनुभवाय छे। आ प्रमाणे अनाकुल सुख शक्ति ना कार्य द्वारा चारित्र गुणनी दशा समझी शकाय छे। स्वस्वरूपना आश्रय स्वरूप रमणतानी आत्मानुभवनी दशा थता महावैराग्यने चारित्रनी दशा प्रकट थाय छे। आ दशामा अनुपम अनाकुल आनंद भेगोज होई छे। आत्मानुभव थता महाहितकारी वितरागता सहित अनाकुल आह्लादजनक सुखनी दशा प्रकट थाय छे। पण अरे अज्ञानी जीव आवी चारित्र दशाने कष्टदायक माने छे। छड़ाळामां आवे छे ने के आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान। क्या कहते हैं, ये मिथ्यात्वी जो जीव होता है वो क्या मानता है, उसकी बात चल रही कि आत्मा के हित के लिए जो कारणीभूत यानी कारण स्वरूप ऐसा जो वितराग ज्ञान है, ये ज्ञान कैसा लिया है, साधा ज्ञान नहीं, वितरागता सहित का ज्ञान जिससे वितरागता बढ़े ऐसा ज्ञान, ते लखे आपको कष्टदान, वह हमारे लिए कष्टदायक है। अभी अपने यहाँ एक बहन आती थी ना, वो क्या बोलती थी, इग्नोरेंस इज ब्लिस। ये आप बोल चुके ना क्या, कि आलू प्याज आदि में असंग अनंत जीव होते हैं, हम नहीं खाते थे, अपने नहीं जानते थे तो बिल्कुल हमें कोई दुख नहीं था, और हम तो चाव से खाते थे मजे में, अभी आपने बता दिया, फिर खाते खाते हमको तकलीफ होती, अरे मैं कुछ गड़बड़ कर, तो ये क्या हो गया, ये अभी कष्टदायक हो गया, ये तुम्हारा ज्ञान नहीं था तो अच्छा था, हमको ज्ञान नहीं था तो अच्छा था बोलते। आज ही फोन पर किसी ने बात की है, अभी मुझे याद नहीं आ रही है, आज बहुत फोन आए थे, एक लॉस एंजल्स से आया था और एक कहां से आया था, लंदन से एक आया था, एक बंबई का कोई फोन नहीं करता हमारे अश्विन भाई के अलावा एक वो क्या है, इंडी नाम का गांव है, इंडी से आया था, एक बेलगाम से आया था, एक उमरगा। अरे क्या लोग कुछ ना कुछ पूछते हैं, अन्य बातें कुछ नहीं हो, तत्व की बातें हैं। तो वो एक भाई ऐसा ही कहते थे कि आपके हमारे ऊपर इतनी मेहरबानी है कि हम ये पहला कुछ भी खाते थे और हम तो बहुत मजा करते ऐसा मानते थे, लेकिन अभी समझ में आया कि हम कितना खोटा काम करते थे। देखो गांव-गांव के लोग, वो तो उमर का बोले तो कितना छोटा गांव है।
लंदन वाला भी कह रहा था, उसके लड़की को उसने वो तत्व परिचय पुस्तक पढ़ने को दी, हाँ, उसने हाँ। वो आलू प्याज छोड़ दिया खाना,
और उसने वो लड़की ने बोला बहुत छोटी है, अपने तेजल की उम्र की होगी, आज तक हमने कितना पाप किया।
वो कहती जैन धर्म में इतनी महानता है, इतनी बातें हमको पता ही नहीं था।
यानी यहाँ बता रहे कि तेल लगे लखे यानी ऐसा जानता है आपको कष्टदान, ये सारी बातें हमें कष्ट देने वाली है, ये नहीं जानते तो अच्छा था। एक बार सांबल तो खरो, अंदर त्रिलोकीनाथ भगवान सच्चिदानंद प्रभु अनंत शक्तियों नो सागर लहराई रहो चाह, तेनी एक एक शक्ति मां बीजी अनंत शक्ति नो रूप छे, एक एक शक्ति मां अनंत शक्ति व्यापक छे। आहा हा, व्यापक क्यों कहा? क्योंकि एक ही क्षेत्र में सारे गुण है ना, तो एक ही जगह है इसलिए एक दूसरे में व्यापक है। आवा अनंत शक्ति में भगवान आत्मा ने जारे पर्याय अंतरंग में वड़ी ने देखे छे, श्रद्धे छे ने तेमा रमे छे, त्यारे प्रचुर आनंदनी महाआनंदनी दशा प्रकटे छे। आवी आ अनंत शक्ति में श्रद्धा ने चारित्र बन्ने ने समावी दीधेल छे। भाई सम्यक दर्शन थाय, सम्यक चारित्र प्रकटे अने साथे आनंद न आवे एवी वस्तु स्थिति नथी। केम के ज्ञान मात्र भावना परिणमन मां सर्व आनंद शक्तियों एक साथे उछड़े छे, एटले तो सर्व गुनाउस्ते समकित एम कहियूं छे। कोई कहे के हमने समकित थयूं छे पन आनंद अनाकुल अल्लाद प्रकट्यो नथी तो तेनी वात झूठी छे। झूठी शू छे? के तेने आत्मानुभव थयो नथी एम, सम्यक तो थयूं नथी अर्थात तेने समकित थयूं ज नथी, ते अज्ञानी ज छे। घना जैन भाषियों एवं माने छे, तो जैना भाषियों जैनों का आभास होने वाला कि हमने समकित तो छे ने हवे व्रत लईए एटले चारित्र आवी जशे, पण तेमनी ए मान्यता तद्दन झूठी छे। केम के अनाकुल आनंदनी दशा प्रकट्या विना समकित होतू ज नथी। कूल पद्धत देखो ये गुणांश का अर्थ हरेक पर्याय में सम्यक यानी स्वभाव रूप परिणमन चालू होता है। देखो द्रव्य का अंश क्या है? गुण का अंश क्या है? उनकी पर्याय। तो सर्व गुणांश के यानी सभी गुणों की जो पर्याय है, जो विभाव रूप से परिणमित होती थी वह सम्यक रूप से परिणमित चालू हो गई, इसलिए कहते हैं सर्व गुणांश से सम्यक्त्व। ये तो हमारे श्रीमद राजचंद्र बोल गए ना, सर्व गुणांश से सम्यक। ये बात सबकी एक ही होती है, कहने का थोड़ा थोड़ा फर्क है, समझना तो अपने को वही है जो असल है। अभी यहाँ तो तीन गुणों की मुख्यता करके बात बोलते हैं ना कि सम्यक तो हुआ यानी क्या, सम्यक दर्शन श्रद्धा ज्ञान और गुण की सम्यक रूप से परिणति हुई। अब यहाँ तो बताते भाई वो हुई के नहीं कैसा समझेगा, तो तेरे को अतीन्द्रिय आनंद होगा तो आनंद भी उसके साथ परिणमा के नहीं, मतलब सुख शक्ति। अभी कहते सुख की बात मत करो, सुख में तो हमने श्रद्धा को भी गर्भित किया है और चारित्र को भी, यानी ये एक दूसरे से संलग्न है, जुड़े हुए हैं। कुल पद्धति थी कहीं समकित होतो नथी, ऐसा बोलते हैं ना। देखो अभी जब ये 20-25 साल पहले की बात है, स्वामी जी जब अभी सब तो जानते थे, अभी 92, 93, 94 उम्र के हो गए, अभी इनके बाद यहाँ कौन बैठेगा, इनके बाद यहाँ कौन बैठेगा। जैसा अभी मान लो कि भाई अभी जवाहरलाल नेहरू गए तो अभी उनकी जगह पे कौन आएगा, ऐसा लोगों को लगता है ना। मुझको भी लगता था, हो मैं दुकान छोड़ूंगा तो दुकान का क्या होगा। अरे अभी तो मैं था उससे डबल ट्रिपल कमा रहे वो लोग, ख्याल में आया ना। ऐसा कुछ नहीं है, तो अभी तो ऐसी बात चल रही, हुकुम जनजी बारिल के बाद कौन। अरे जो होना है सो निश्चित है, क्या चिंता करने का है। हम ही ऐसा मानते कि हमारे कारण से ये चल रहा है बस। क्यों डॉक्टर साहब? ये सहज है भाई, तो यहाँ तो कह रहे हैं यहाँ कुल पद्धति यानी राजा का बेटा राजा ही होना चाहिए, वैसे पंडित का बेटा पंडित ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, वो तो हीरे का व्यापार भी हो जाए। क्यों इस तरह कहते, कुल पद्धति थी का ही समकित होतु नहीं, यानी यहाँ ऋषभ देव सम्यक दृष्टि थे, उनका बेटा वो सम्यक दृष्टि था कि नहीं, कौन और उनका बेटा, अरे एक कोड़ा कोड़ी सागर करीबन 42,000 वर्ष के, छोड़ो कुछ नहीं उसके सामने, वो वैसे ही रहे ना, बीच में कहीं हो गए सम्यक, तो ये कुल पद्धति थी थतु नहीं, ये जो बात कहना है वो हमें आगम के द्वारा भी समझना चाहिए। संप्रदाय में हमारा गुरु भाई कहता था कि आपने जैन कुल में जन्मया छे एटले समकित तो गणधर देव देवूज थयेलू छे, हवे बस व्रत तप दीक्षा ग्रहण करिए एटले चारित्र थई जारे, भगवान शू वात छे आ, सम्यक दर्शन काई कुल पद्धति नी चीज नथी भाई, आहा हा, अंदर पूर्णानंद नो नाथ सच्चिदानंद प्रभु त्रिकाल विराजे छे, तेनी रुचि प्रतीति थवी ते सम्यक दर्शन छे, अने ते स्वानुभूति नी दशा मा प्रकट थाई छे, आहा हा, आ समकित तो सर्वधर्म नु मूल छे भाई, हवे समकित शू चीज छे ए जाने नहीं तो एनो पुरुषार्थ केम करे, एनो पुरुषार्थ एटले उसको प्राप्त करने का, क्योंकि क्या जिसको हमें प्राप्त करना है वही मालूम नहीं है, हमें तो धर्म करना है, पर धर्म तो धर्म धर्म तो सब कहते हैं लेकिन धर्म क्या होता है कोई जानता नहीं है, ऐसा कुछ है ना एक गायन गाना है, तो वैसा कह रहे हैं कि स्वानुभूति दशा मां क्या कहा नहीं, हाँ क्या कहते हैं, अभी सबकी सू चीज छे ए जाने नहीं, अने ते एनो पुरुषार्थ केम करे, एटले सम्यक तो प्राप्त करवानो पुरुषार्थ केम करे, अने विना समकी चारित्रणी दशा केम प्रकट थाय, आ धार्मिक वर्ग मां आवेला सौ बराबर जाने के समकित अने धर्म चारित्र शू चीज छे, केम के लोक मां एज सारभूत हितकारी चीज छे, ये धार्मिक वर्ग मां आवेला, ये समझ में आया, देखो हर आषाढ़ महीने में वहाँ शिविर लगता था, धार्मिक शिविर जिसको कहा जाता था, और उसमें ये सब बातें सिखाई जाती थी, इसलिए कहते कि वहाँ आने वाले सभी लोग जानते हैं कि सम्यक तो और चारित्र क्या है। तीन लोक तिहु काल माही नहीं दर्शन सो सुखकारी, सकल धर्म को मूल यही, ये गलत छपा है, मूल यही इस बिन करनी दुखकारी। क्या कहते, तीन लोक और तीनों काल में सम्यक दर्शन जैसा सुखकारी, सुख करने वाला, सुख देने वाला, सुख स्वरूप कोई बात नहीं, सकल धर्म को मूल यही, यानी यह सम्यक्त्व ही सकल धर्म का मूल है, और इसके बिना यानी सम्यक्त्व के बिना जो कुछ तुम कर रहे हो सब करनी, लिखा ना इन बिन करनी दुखकारी, वह दुख रूप है, दुख स्वरूप है भाई, सम्यक दर्शन नी पर्याय मा आखो त्रिकाली आत्मद्रव्य आवी जाए एम नहीं, पन एमा पूर्ण आनंद स्वभाव एवा त्रिकाली द्रव्य नी ने एना पूर्ण त्रिकाली सामर्थ्य नी प्रतीति श्रद्धा अवश्य आवी जाए छे। आहो सम्यक दर्शन आवी कोई अलौकिक चीज छे, एनी प्राप्ति तथा निर्मल रत्नत्रय रूपी मोक्ष मार्ग खुली जाए छे। आहा चौथे पांचवे छठे गुणस्थाने सम्यक दर्शन सहित जे अंतरात्मा छे तेने शिवमगचारी कहो छे, शिवमगचारी यानी क्या, शिव मार्ग पर चलने वाले। आप कौन हो, तो कहते पादचारी हैं, यानी क्या फुटपाथ पे चलने वाले, तो ये कैसे हैं, शिव मगचारी हैं, मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं। छोड़ाड़ा में आवे छे ने के मध्यम अंतर आत्म है जे देशव्रती अनगारी, जगन कहे अविरत सम्यक दृष्टि तीनों शिवमगचारी। ये जघन्य अंतरात्मा, जिसको मध्यम अंतरात्मा की बात कर रहे हैं, वो कौन है? तो देशव्रति है और अनगारी। अनगारी यानी क्या? हाँ बेटा, मुनि 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 क्या कहा? मध्यम अंतर आत्मा है जे देशव्रति, यानी पंचम गुणस्थान व्रती, छठे सातवें से। अभी वैसे वहां दो डिवीजन कर रहे हैं, लेकिन हम ग्यारहवें गुणस्थान के पहले वालों को सबको मध्यम अंतरात्मा कहेंगे, और ग्यारहवा बारहवा, भाई ग्यारहवा काटा तो बारहवा वाला उत्तम। और जघन्य जो है वह कौन है? चौथे गुणस्थान वर्ती। तीनों शिव मगचारी, यानी ये तीनों ही मोक्ष मार्ग पर चलने वाले जीव है। अभी बहुत बारी बारे में ऐसा होता है कि लोगों का ऐसा कहना है और हट है, वो ये समझाते हैं या मानते हैं और दूसरों को भी मनवाते हैं कि मुनि को ही सम्यक दर्शन होता है, चौथे पांचवे गुणस्थान वर्ती जीव के सम्यक दर्शन नहीं है। क्यों ऐसा कहते हैं? जो जो बात छड़ालाकार बनारसी दास जी या पंडित टोडरमल जी बताएंगे, तो उनके सामने हम बताएंगे ये बात नहीं चलेगी, हमको मुनि का बोला हुआ चाहिए। इसके लिए वो इनको भी सम्यक भी मानने के लिए तैयार नहीं। अभी ये बात क्यों कि स्वामी जी सम्यक दृष्टि थे, वो उनको कबूल नहीं था और उनकी बात माननी नहीं थी, तो उन्होंने इन सारों को हटा दिया। किसको? जो जो गृहस्थी थे या चौथे पांचवे गुणस्थान वर्ती जो थे, जो पंडित जिनको कहते हैं, इनकी बात को ठुकराते थे, तो उन्होंने कितना बड़ा अपराध किया। किसकी अवहेलना की भाई? किसका अपमान किया? अच्छा कोई बात नहीं, आप बोलो बहन। हाँ किसने बताया? आपने? अच्छा कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। क्योंकि देखो सर्वज्ञ भगवान ने, सुनो सुनो बहन, घबराना नहीं, उसमें क्या है, आपने को कभी सोच में थोड़ा सा इधर उधर हो जावे ना, तो पॉइंट तो ख्याल में रहता है, आइन मौके पे याद नहीं आता है। देखो जिनेंद्र भगवान के वाणी में कौन सा अनुयोग आया होगा? चार वाणी, तो कर्णान योग की जो बातें हैं, जो लिखने वाले नेमीचंद है, आचार्य नेमीचंद, उनको तो सिद्धांत चक्रवर्ती कहा था, पदवी दी थी वो सिद्धांत चक्रवर्ती। तो उन्होंने जो, उन्होंने क्या, अन्य सभी कर्णान योग के जो लिखने वाले हैं, उन्होंने चौथे गुणस्थान का नाम क्या बताया? हाँ जी, अविरत सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि आत्मा का अनुभव हुए बिना नाम देंगे उनको? हाँ, ये देश विरति, ये भी देश व्रत है ना उनको, वो भी सम्यक भी है। और उनको दो कषाय चौकड़ी का अभाव कब होगा? राग राग करते करते, द्वेष द्वेष करते करते, क्या वितरागता प्राप्त होते है? ये बात ये लोग मानने को तैयार नहीं। क्यों? बस एम इज ओनली वन, कि स्वामी जी को कैसा नीचे खींचे और उनको नलीफाई करने के लिए ऐसी खोटी खोटी मान्यताओं का उन्होंने पकड़ के रख लिया। तो नुकसान किसका हुआ? ख्याल में आया ना, क्या करें? तो यहाँ तो कहते हैं ये क्या, मैं इसलिए बता रहा था कि यहाँ छड़ालाकार स्वयं तीनों को मोक्ष मार्ग ही बता रहे भाई, तीनों दृढ़ शिवमगचारी बताया ना, कैसे है? मध्यम अंतरात्मा है। कौन है मध्यम अंतरात्मा? तो पांचवे छठे सातवें गुणस्थान वर्ती जीवों को यहाँ लिया। अभी वैसे देखा जाए तो आठवें नौवें दसवें भी ले लो और जघन्य दो विभाजन किया जाता है, लेकिन वास्तव में
यहाँ छड़ाला में जो बात है ना, मध्यम में शुद्धोपयोगी मुनिराज को लिया है, चौथे पांचवें छठे, पांचवें और छठे मध्यम है, और चौथे वाला जघन्य है। और सातवें से ऊपर जो शुद्धोपयोगी मुनिराज है वो उसको वहाँ उत्तम कहा है।
मैंने कहा ना दो प्रकार से,
दो बातें आती, दो प्रकार से
कथन, दो प्रकार से उनका डिवीजन किया जाता है, लेकिन उत्तम अंतरात्मा तो बारहवें गुण स्थान वाले को ही कहा, क्योंकि वो
छोड़ाला की बात है ना, तो छोड़ाला में शुद्धोपयोगी मुनिराज को दिया।
आपका ऐसा कहना है कि छड़ाला के छड़ाला कार के अनुसार ये चौथे पांचवे छठे वाले को मध्यम कहा?
नहीं, चौथे को,
चौथे को जगन्य कहा,
चौथे को जगन्य, हाँ मध्यम, मध्यम की बात कर रहे हैं। देखो मैं छड़ाला पढ़ती हूँ। उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी, सभी को अंतरात्मा कहा, जगन्य मध्यम उत्तम, द्विविध संग बिना शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी, दो प्रकार के परिग्रह के बिना शुद्ध उपयोगी मुनिराज उत्तम अंतरात्मा है। मध्यम अंतर आत्म है जे देशव्रती अनगारी, मध्यम है वो देशव्रती है, और अभी अनगारी में से कोई कौन से रहे, छठे गुण स्थान वाले। जगन कहे अविरत समदृष्टि तीनों शिवमगचारी, तीनों ही मोक्ष मार्ग पर है।
ये छरणालाकार के अनुसार
कथन है,
जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट अंतरात्मा की बात की है, लेकिन आपको मैं दूसरा भी डिवीजन बता सकूंगा, अभी तो मेरे पास शास्त्र नहीं है, कल निकाल के दिखाऊंगा कि वहां पर क्या कहा है, कि जो अभी हमने इसमें ही पढ़ा था भाई, हाँ पहले भाग में, कि वहां पर चौथे को जघन्य और पांचवे से लेकर दसवें तक को मध्यम और बारहवें को उत्तम कहा गया अंतरात्मा, और जिनेंद्र भगवान जो तेरहवें चौदहवें गुणस्थान वर्ती जो है उनको
परमात्मा,
परमात्मा एक और सिद्ध भी परमात्मा, ऐसे अलग अलग जगह उसका अलग अलग डिवीजन है, तो समझ में लेना। यहाँ तो बात छड़ालाकार की है, तो उनके अनुसार आप जो कहते वो बात ऐसी ही इनका कहना है, यानी आपको नलीफाई नहीं कर रहा हूँ, दो ही प्रकार के कथन आते हैं, हमें बस समझना है अपेक्षा से क्या होता है। जो आत्मानुभूति यानी शुद्धोपयोग में रहने वाले उनको उत्तम कहा, तो सात से लेकर आगे के सभी गुणस्थान बारहवें तक के शुद्धोपयोगी गुणस्थान है, इसलिए यहाँ देशव्रत और अनगारी यानी जो छठे गुणस्थान वर्ती उनको मध्यम कहा, चौथे वाले को जघन्य कहा। आई मार्ग मा गमन शुरू करियूं छे तो चौथे अविरत सम्यक दृष्टि ने पन शिवमगचारी कहो छे, चारित्रणी पूर्णता तो चौदमा गुणस्थान मा गुणस्थान ना अंत समय मा थाई छे। ये बिल्कुल बात ध्यान में रखना, क्या कहा, चारित्र की पूर्णता जो है तो वह चौदहवें गुणस्थान के अंतिम समय में होती है, यानी हम तो ऐसा कहते हैं अरे बारहवें गुणस्थान में तो यथा क्या चारित्र की प्राप्ति हुई, तो द्रव्यानुयोग कहेगा। अभी योग कहाँ तक है, तेरहवें गुणस्थान के अंत समय में, लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं चौदहवें गुणस्थान के अंतिम समय में। हाँ बोलो आप कुछ, अच्छा बोल रहे हैं, मैं समझा बोल रहे हैं। छता छठा सातवां गुणस्थान मां स्वस्वरूप नी दृष्टि सहित स्वरूप मां रमणता लीनता नी विशेष दशा प्रकट थाई छे, अने त्यारे साथे प्रचुर आनंदनी दशा प्रकटे छे। आहा आ छठा सातमा गुणस्थान थी मुख्यपणे चारित्र गणवामां आव्युं छे, अने त्यांथी मोक्ष मार्ग कहेवामां आवे छे। चौथा गुणस्थान थी मार्ग खुले छे, तथापि चौथामां साक्षात चारित्र दशा नथी, एटले साक्षात मोक्ष मार्ग नथी। साक्षात चारित्र दशा ते स्वरूपनी उग्र रमणतानी विशेष दशा तथा प्रकट थाय छे। जो श्रेणिक राजा क्षायिक समकी थिया था अंदर पूर्णानंद स्वरूप निज आत्मद्रव्य नी निश्चल प्रतीति थई हती तथापि तेओ चारित्र लई शक्या न हता स्वस्वरूप नी उग्र रमणता रूप चारित्र नी दशा तेमने प्रकट थई न हती तेवी रीते श्री ऋषभदेव भगवान वर्तमान चौबीसी ना प्रथम तीर्थंकर हता 84 लाख पूर्व नु तेमनु आयुष्य हतु क्षायिक समकी थी हता त्रण ज्ञान साथे लईने अवतर्या हता। ये तीन ज्ञान कौन से थे प्रेरणा बिना आप बताएंगे? अवतरे आते ने जन्मे थे हाँ। मन परे ज्ञान क्यों नहीं, वो भी हो सकते हैं ना। बहुत बहुत अच्छा हाँ। छताए अभी इनका क्या कहना है ये जो चारित्र की प्राप्ति की बात चल रही ना, तो कहते 84 लाख पूर्व तेमनो आयुष्य तो क्षायी समकी था ने त्रण ज्ञान साथ लईने अवतरिया था एटले जन्म्या था। छता 83 लाख पूर्व सुधी तेओ गृहस्थ दशा में रहा चारित्र धारण न करी शक्या। एक पूर्व एटले केटला वर्ष खबर छे? एक पूर्व में 77,56,000 करोड़ वर्ष थाय छे। आवा 83 लाख पूर्व सुधी तेओ चारित्र लई न शक्या था, चारित्र लई शक्या न हता। उत्तर पुराण में एम वर्णन छे के बधा तीर्थंकरो 8 वर्षनी उम्रे 12 व्रत धारण करे छे। आ रीते अबजो वर्षे तेमने 5मुं गुणस्थान रह्युं पण त्यां लगी आगळ न वधी शक्या। चौथे पांचमे गुणस्थाने जो के चारित्रनो अंश होय छे पण मुनि दशाने योग्य साक्षात चारित्र दशा त्यां होती नथी। अहो आवी चारित्र दशा कोई अलौकिक होय छे अने ते महापुरुषार्थी बड़भागी पुरुषों ने प्राप्त थती होई छे। बड़भागी यानी जिनका भाग्य बहुत ऊंचा है। भाई समकितनी प्राप्ति में जे अंतर्मुख दृष्टिनो अपूर्व पुरुषार्थ जोईए तो चारित्र दशानी प्राप्ति में पण स्वरूप रमणतानो महान पुरुषार्थ जोईए। मात्र नग्न थई जवुं के 28 मूलगुण पाड़वा तेनु नाम काई चारित्र नथी। अंदर आनंद स्वरूप आत्मा में उग्र लीनता रमणता थई जाए आनंद स्वरूप नी अस्थिनी मस्ती में मजगूल थई जाए तेनु नाम चारित्र छे। अत्यारे तो चारित्रना नाम पर बधी गड़बड़ थई रही गई छे। हवे 28 मूलगुणनाय ठेकाणा न होय 5 महाव्रतनाय ठेकाणा न होय ने मात्र बहार नग्नता वडे चारित्र मानवा मनावा लाग्या छे पण ए तो अज्ञान छे भाई। एमा तने कोई लाभ नथी बापू। ऊंधी विपरीत मान्यतानुं फळ तो बहु आकरु छे भाई। स्वरूप लीनता विना 28 मूलगुण पण काई ज नथी बापू। तेथी तो कह्युं छे के मुनिवृत्त धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो पै निज आत्म ज्ञान विना सुख लेशन पायो। ये भी छेड़ाला में ही लिखा हुआ है। अरे 5 महाव्रत चोखा पाड़े 28 मूलगुण बराबर धारण करे पोताना माटे बनावेला आहार पानी प्राणांते पण न ले। प्राणांते याने समझ में आए? जान जाएगा हाँ, प्राण जाएगा फिर भी वो उद्दिष्ट आहार को ग्रहण नहीं करेंगे। क्या लिखा देखो देखो, पोताना माटे बनावेला आहार पानी प्राणांते पण ग्रहण न करे तथा 11 अंग भणी जाय। आहा आवा क्रियाकांडना शुभ लेशाना परिणाम पण जीवे शुक्ल लेशाना शुक्ल लेशाना परिणाम पण जीवे अनंत वार कर्या छे अने छता सम्यक दर्शन ज्ञान विना ते लेश पण सुख पायमो नथी अर्थात दुख ज पाम्यो छे। मतलब के 5 महाव्रतादिना परिणाम आश्रो होवाथी दुख रूपज छे चारित्र नथी। तो चारित्रवंत मुनि महामुनिवरो ने तो होय छे तो खरा होय छे चारित्रवंतो ने ते अवश्य होय छे तथापि ते चारित्र नथी। यानी वो भी मूलगुण पालन करने के भाव करते हैं लेकिन वो कोई चारित्र नहीं है। मुनिवरो तो तेने चारित्र कहता नथी। चारित्रनी साथे ते भले हो અને એ બધું વ્યવહાર આચરણ રાગ હોવાથી દુઃખરૂપ જ છે. તેને સમયસા નાટકમાં જગપંત કહ્યો છે. ત્યાં કહ્યું છે કે તાકા રણજગ પંથ ઇત ઉત શિવ માર્ગ જોર, પરમાદિ જગ કો દુઃખે અપરમાદિ શિવ ઓર. ક્યા કહેતે હૈ, જેટલો રાગ આવે છે તે સંસાર છે એમ પંચ સંગ્રહમાં પણ કહ્યું છે. આવી વાત છે, સમજાય છે કાંઈ? અભી ઉસકા અર્થ નહીં દિયા, મેં બતા દઉં. તા કારણ જગ પંત ઇથ, ઉસ કારણ સે ઇસકો જગ પંત કહા હૈ. હા, ઉત શિવ માર્ગ જોર, યાને ઇસે જુદા શિવ માર્ગ હૈ, મતલબ મોક્ષ માર્ગ હૈ. પરમાદી જગ કો ધુકે, જો પ્રમાદી હૈ વો જગત મેં ફેરે મારતા, મતલબ રખડે છે. અપરમાદી શિવ ઓર, જો અપ્રમાદી હૈ, યે પ્રમાદી ઓર અપ્રમાદી કિસકે બારે મેં હૈ, જો સ્વરૂપ મેં લીનતા હૈ વો અપ્રમાદી હૈ, ઓર જો સ્વરૂપ કા આચરણ નહીં કરતા હૈ વો પ્રમાદી હૈ. અરે સમ્યક દર્શનના સ્વરૂપની અને તેને પ્રગટાવવાની રીતની ખબર વિના જેવું પોતાની મતિકલ્પનાથી વ્રત તપ ધારણ કરીને તેને ધર્મ માની લે છે, પણ તેથી કાંઈ તેને ધર્મ થાય નહીં. જેને સ્વરૂપના શ્રદ્ધાન જ્ઞાન થયા હોય અને સ્વરૂપની ઉગ્ર રમણતા થાય, તેને ચારિત્રને ધર્મ થાય છે અને તેને અંતરમાં અનાકુળ આનંદનો પ્રચુર આસ્વાદ આવે છે. આવા અંતરંગ ચારિત્ર વિના મુક્તિ થતી નથી. ભાઈ, જેમાં આસ્વાદમાં આવતી અતિન્દ્રિય આનંદના રસની પ્રબળ ધારા પ્રકટ થાય તેનું નામ ચારિત્ર છે, અને તે સમ્યક દર્શનના અભાવમાં કદી હોતું નથી. આહા, ભગવાન આત્મા નિત્ય જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપ છે, તેની અંદર અંતર રમણતા થાય તે ચારિત્ર દશા છે. આવા ચારિત્ર સાથે અંદર અતિન્દ્રિય આનંદની પ્રકૃષ્ટ એને ઉત્કૃષ્ટ ધારા વહે છે. આવી અનાકુળ આનંદની ભૂમિકામાં મુનિને કિંચિત વ્યવહારત્નનો રાગ આવે, પણ તેનું તેને સ્વામિત્વ નથી. વ્યવહારનો રાગ અને તેનું ફળ જે ઇન્દ્ર ઇન્દ્રાણીના વૈભવ ને કરોડો અપ્સરાઓનો સંયોગ આવે તે એને ઝેર સમાન હેય બુદ્ધિ એ હોય છે. પુણ્યને પુણ્યના સમસ્ત ફળ સમકીતને ઝેર જેવા લાગે છે. ઇન્દોરના કાચ મંદિરમાં લખ્યું છે કે ચક્રવર્તી કી સંપદા અરુ ઇન્દ્ર સારિખા ભોગ, કાગવિટ સમ ગિનત હૈ સમ્યક દ્રષ્ટિ લોક. એ આપણે ઇન્દોર ગાંવ હૈ ના, યહાં પર એમપી મેં, તો વહાં પર એક કાંચ મંદિર હૈ, બહુ પુરાના હૈ. ઓર ઉસ કાંચ મંદિર મેં, યાને કાંચ મંદિર ક્યું કહેતે, કે વો છોટી છોટી કાંચ કે ટુકડે લગા લગા કે પૂરા મંદિર બનવાયા હૈ, ઉસમે એસે લિખે હુએ કુછ શ્લોક હૈ. તો વો શ્લોક મેં એસા કહેતે હૈ કે જો સમ્યક દ્રષ્ટિ લોક હૈ ઉનકી કેસી ભૂમિકા હૈ, વો કેસા સોચતે હૈ કે ચક્રવર્તી કી સંપદા ક્યું ન ઉનકો પ્રાપ્ત હો, या उसके उनके सामने चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र जैसा भोग अगर मिले तो वो उनको भी वो कहते वो कागविट, यानी समझ में है, काग कव्य की विष्टा, उनके जैसा उनको वो मानते हैं. ऐसा सम्यक दृष्टि लोगों का विचार, ऐसी विचारधारा उनकी होती है. कोई ने था कि पुण्य ना पढ़ने कागविट अर्थात विष्टा समान केम कया. अरे भाई, ભગવાને તો પુણ્યને પુણ્યના ફળને ઝેર કયા છે, છતાં તને પુણ્યનો આટલો બધો હઠીલો પ્રેમ કેમ છે? જો તારે ધર્મ ચારિત્ર, ધર્મ એટલે ચારિત્ર જોઈએ છે, તો પુણ્યનો પ્રેમ પ્રથમ જ છોડવો જોઈશે. કેમ કે જેને પુણ્યને ઉપાદેય માન્યું છે તેને આનંદ સ્વરૂપ આત્મા હેય જ થઈ ગયો છે, અને જેને આત્મા ઉપાદેય છે તેને પુણ્ય હેય જ છે. આવી વાત છે, અહીં કહે છે અનાકુળતા જેનું લક્ષણ એટલે સ્વરૂપ છે એવી સુખ શક્તિ અહ જેમ જાણવું જાણવું એ જ્ઞાનનું લક્ષણ છે તેમ અનાકુળતા સુખ શક્તિનું લક્ષણ છે. આવા સુખથી ભરેલો અક્ષય ભંડાર ભગવાન આત્મા છે. આહા એ સુખ સુખ કોને કહીએ કે જેમાં આકુળતાનું નામ નિશાન નથી. સુખ શક્તિમાં આકુળતા નહીં ને તેના ક્રમવર્તી પરિણમનમાં પણ આકુળતા નહીં. ક્યા કહા જો ગુણ હૈ ઉસમે ભી કોઈ આકુલતા નહીં હૈ ઓર ઉસકી જો પર્યાય હો રહી હૈ કોણ સી સમ્યક પર્યાય યાને સ્વભાવ પર્યાય તો પરિણમનમાં પણ આકુળતા નથી. ભાઈ તારે સુખ જોઈએ છે તો અનાકુળ સુખ જેનો સ્વભાવ છે એવા તારા આત્મદ્રવ્યની દ્રષ્ટિ કર અને તેમાં જ લીન થા. બાકી આ રાગાદી વિકાર તો આકુળતા છે, પુણ્યના પરિણામ પણ આકુળતા છે, દુઃખરૂપ છે. ભાઈ મારે સુખ જોઈએ એમ સુખની અભિલાષ ઈચ્છા કરીએ સુખ નહીં મળે, કેમ કે ઈચ્છા માત્ર દુઃખરૂપ છે, દુઃખનું મૂળ છે, દુઃખ મૂળ છે. ક્યાં કહેતે હૈ મુજે સુખ ચાહીએ એસી ઈચ્છા કરના વહ ભી દુઃખ સ્વરૂપ હૈ, ક્યુંકિ ઈચ્છા ઇટસેલ્ફ દુઃખ હૈ એસા કહેતે હૈ. ક્યા ઈચ્છત ઈચ્છત ખોવત સભય હૈ ઈચ્છા દુઃખ મૂળ. યે ઈચ્છા કરને સે હી વહ સબ કુછ ખો ડાલતા હૈ, ક્યું કે ઈચ્છા હી દુઃખ કા મૂળ હૈ. માટે ઈચ્છા માત્ર થી વિરામ પામી સુખના ભંડાર એવા સ્વસુખ સ્વરૂપમાં ગુપ્ત થઈ જા. જુઓ હરણની નાભીમાં કસ્તુરી હોય છે પણ એની એને ખબર નથી, તેથી ગંધ આવતા એની શોધમાં તે બહાર દોડા દોડા દોડ કરી મૂકે છે. પણ બહારમાં હોય તો મળે ને, બિચારું થાકીને નાહક ખેદ ખિન્ન દુઃખી થાય છે. તેમ ભગવાન આત્મામાં સુખ શક્તિ ત્રિકાળ છે, પરંતુ અજ્ઞાની જીવને એની ખબર નથી, તેથી તે સુખની શોધમાં બહાર ઇન્દ્રિયના વિશ્વમાં ખાનપાનમાં સ્ત્રીના દેહમાં પાક બંગલામાં રાગ રંગમાં ઇત્યાદિમાં સુખ છે એમ માની ઇન્દ્રિયના વિષયો પ્રતિ દોડાદોડ કરી મૂકે છે. પણ ત્યાં બહારમાં એ જળ પદાર્થોમાં સુખ હોય તો મળે ને, વિશ્વમાં ફોકટ ફાંફા મારીને તે નાહક ખેદ ખિન્ન થાય છે, દુઃખી જ થાય છે. અરે બહારના જળ વિશ્વમાં સુખ નથી, વિશ્વની મમતાને અનુરાગમાં સુખ નથી. યાને વિશ્વમાં જો મમતા કરે પ્રેમ કરે અનુરાગ એમાં સુખ નથી, ને કેવળ વિશ્વને જ જાણનારા વૈરલક્ષી જ્ઞાનમાં એ સુખ નથી. આહા એક સ્વાનુભૂતિમાં જ સુખ છે. માટે સુખ જોઈએ તો ઈચ્છાથી વિરામ પામી સ્વાનુભૂતિ કર. આહા લ્યો આવો માર્ગ. ભગવાન આત્મામાં શક્તિરૂપે સુખ ત્રિકાળ ભૈરું છે. ભગવાન સિદ્ધને તેની પૂર્ણ વ્યક્તિ થઈ છે, વ્યક્તિ એટલે વ્યક્ત થયું છે. સિદ્ધ ભગવાનને સુખની પૂર્ણ દશા અનંત સુખ હોય છે. સિદ્ધ ભગવાનને પ્રકટ આઠ ગુણના વર્ણનમાં સમ્યક્ત્વ જ્ઞાન દર્શનને વીર્ય એ ચાર આવે છે, અને ચાર ઘાતી કર્મના અઘાતી જોઈએ તો ઘાતી કર્મના ક્ષયથી સમ્યક્ત્વ જ્ઞાન દર્શન અને વીર્ય પ્રકટ થાય છે, અને ચાર અઘાતી કર્મના ક્ષયથી અવ્યાબાદ અવગાહન સૂક્ષ્મત્વ અને અગુરુ લઘુ ગુણ પ્રકટ થાય છે. અભી થોડા સા હમ રુકતે હૈ, મુજે યે પૂછના હૈ કે યે ચાર ગુણ જો સિદ્ધોં કો અઘાતી કર્મ કે નાશ હોને સે પ્રકટ હોતે હૈ તો કોણ સે કર્મ કે વ્યય સે યા નાશ સે યે ચાર એક એક કો એક એક કે સાથ ઘટિત કરના હૈ, કોણ કરના ચાહેગા? કોઈ ભી હાથ નહીં ઉઠાતા હૈ, સબ નારાજ હૈ. હા દો હાથ ઉઠ ગયે. આપ કોણ બતાના છે? બાપા આપ બતાએંગે? અચ્છા યાદ નહીં, કોઈ બાત નહીં. આપ બેન બતાવો છો? હા દેખો દેખો नहीं 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 देखो देखो ये अघाती कर्म जो है, हाँ वो नाम तो दिए इसमें, ये क्या कहा है, देखो चौथी लाइन है ना, तीसरी लाइन में लिखते हैं अने लास्ट में चार अघाती कर्मणा क्षय थी, तो ये चार गुण प्रकट हुए अव्याबाध अवगान सूक्ष्मत्वर। हाँ एक मिनट अभी प्रेरणा बहन बोलेगी, तो ये कौन से कर्म के व्यय से ये क्रमशः बताओ आप या जो आते बताओ। साता साता क्या है, हाँ 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 वेदनी कर्म के क्षय से अव्याबाध गुण प्रकट होता है ऐसा समझाना। हाँ क्या सही है मिली अपना ये, बोलो बोलो बोलो। अव्याबाध गुण वेदनी कर्म के क्षय से प्रकट हुआ है, आयु के क्षय से अवगाहनत्व, नाम कर्म के क्षय होने से सूक्ष्मत्व, गोत्र, बहुत सही बताया है आपने दोनों ने। गुण प्रकट था इसे, ये हमें थोड़ा सा देखना है। तो घाती कर्म चार है, उनके नाश से कौन से घाती कर्म के नाश से कौन सा कर्म गुण प्रकट होता है, कौन बतावे अभी, आप बताएंगे। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ जोर, अरे अरे शांति रखो भाई, ऐसी दोस्ती काम में नहीं, वो तो अकेले जाएंगे मोक्ष में, हम रह जाएंगे भाई। हाँ बोलो बोलो बोलो, पहला क्या बताया आपने, उससे क्या होगा, क्या प्रकट होगा, अनंत ज्ञान। हाँ और अनंत दर्शन। हाँ अच्छा अनंत वीर। हाँ और बराबर बोलो, सुख गुण जो हुआ है प्रकट वो किसके क्षय से हुआ है, हाँ मोहिनी कर्म। तो मोहिनी कर्म में किसको किसको लेंगे आप, चारित्र मोहिनी को लेंगे या दर्शन मोहिनी को लेंगे। अच्छा चलो, आपने अभी देखा ना, पढ़ा ना हमने कि श्रद्धा और चारित्र ये दोनों गुणों की पूर्णता हो जाते, मतलब सही रूप से प्रकट हो जाते हैं तो उसको अनाकुलता लक्षण सुख गुण प्रकट होता है परिपूर्णता। ये बात हम इसलिए पढ़ना है कि आगे जाके हमारा कंफ्यूजन नहीं होगा है। हाँ तो यहाँ तक तो हमने पढ़ा है, अभी ये भगवान आत्मा में शक्ति रूपे सुख त्रिकाल भरी से इधर से अपन कर लेंगे, ये मैं जानबूझकर बीच में थोड़ा सा आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए ये बात उठाई और आपने सही उत्तर दिया है, बहुत अच्छा। अभी जावानी के ज्ञान तय सूझे लो कालो सोवाणी मस्त कर्ण मो सदा देत हो। अश्विन भाई